भागवत सार की श्रृंखला में आज 8वें स्कंद के 13वें, 14वें और 15वें अध्याय पर चर्चा है। कृपया इसके 14वें अध्याय के एक श्लोक को दोहराइए। चतुर्युगांत काले न ग्रस्तान् श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। चतुर्युगांत कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। चतुर्युगांत कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। चतुर्युगंते प्रत्येक चार युगों सतयुग त्रेता द्वापर तथा कलयुग के अंत में कालेन समय आने पर ग्रस्तान विनष्ट श्रुति गुणान वैदिक उपदेश यथा जिस तरह तपसा तपस्या से ऋषयः ऋषिगण अपश्यन दुरुपयोग देखकर यतः जहाँ से धर्मः वृत्तिपरक कार्य सनातनः शाश्वत। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रत्येक चार युगों के अंत में महान संत पुरुष जब ये देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्ति परक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में धर्म तथा सनातन ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है वृत्ति परक कर्तव्य। सतयुग से कलयुग आते आते धर्म तथा वृत्ति परक कर्तव्य में क्रमशः ह्रास आता जाता है। सतयुग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है किंतु त्रेता में धर्म की कुछ कुछ उपेक्षा होती है और केवल 3/4 धार्मिक कर्तव्य चालू रह पाते हैं। द्वापर में केवल आधा धर्म रह जाता है और कलयुग में केवल 1/4 धर्म रहता है जो क्रमशः लुप्त हो जाता है। कलयुग के अंत में धर्म या मानव के वृत्ति परक कर्तव्य प्रायः विनष्ट हो जाते हैं। दरअसल हम इस कलयुग में केवल 5000 वर्ष भीतर प्रविष्ट हुए हैं फिर भी सनातन धर्म का ह्रास अत्यंत मुखर है। अतएव ऋषियों का कर्तव्य है कि वे सनातन धर्म के हित के बारे में गंभीरता से सोचें और इसे समस्त मानव समाज के लाभ के लिए पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ किया गया है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम रचेत। समग्र कलियुग दोषों से पूर्ण है, यह दोषों के असीम समुद्र की भांति है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत प्रामाणिक है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके आदेशों के अनुसार हम इस संकीर्तन अर्थात कृष्ण कीर्तन के आंदोलन को विश्व भर में जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने किया था। अब यदि इस आंदोलन के उद्घाटक विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें और सारे मानव समाज के लाभ के लिए इस आंदोलन का प्रसार करें, तो वे सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली का सूत्रपात करेंगे। मनुष्य का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना। जीवे र स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। सनातन धर्म का यही सारांश है। सनातन का अर्थ है नित्य या शाश्वत, और कृष्ण दास का अर्थ है कृष्ण का दास। मनुष्य का शाश्वत वृत्ति पर कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो। कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतकर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा हरे कृष्णा। तो भागवत के इन अध्यायों में आठवें स्कंद में अब तक हम लोग समुद्र मंथन की लीला को सुन चुके हैं और अब समुद्र मंथन की लीला समाप्त होने के बाद जो कि छठे मनु तक का वर्णन था अब सातवें मनु का वर्णन तेरहवें अध्याय में प्रारंभ होता है। सातवें आठवें नौवें ऐसे 14 मनुओं का वर्णन तेरहवें अध्याय में किया जाता है। तो और 14वें अध्याय में वर्णन होगा कि कैसे ये सारी सृष्टि चलती है और फिर 15वें अध्याय से जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वामन देव के आविर्भाव की कथा प्रारंभ होगी कि कैसे वामन देव प्रकट हुए और उन्होंने क्या लीला की। तो 13वें अध्याय में अब उन्होंने मनुओं का वर्णन प्रारंभ किया तो 7वें मनु का वर्णन किया जिसमें हम लोग हैं जिसे वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव उनका नाम है। विवस्वान के पुत्र हैं इसीलिए वैवस्वत भी कहलाते हैं। तो 7वें मनु का वर्णन प्रारंभ किया। इन अध्यायों में पूरा अध्याय बटा हुआ है 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें और 14वें मनु के वर्णन में और उन वर्णनों में यही वर्णन किया गया कि 7वें मनु कौन हुए 8वें मनु कौन हुए उनके समय में अन्य देवता कौन हुए इंद्र कौन हुए और फिर भगवान के कौन से अवतार हुए ये प्रमुखता वर्णन है। तो इसको संक्षेप में हम लोग सुन लेंगे ताकि आगे की कथा कर सकें। तो 7वें मनु श्राद्ध देव विवस्वान के पुत्र हुए और उस समय जो भगवान के अवतार हुए हैं वे हैं वामन देव अर्थात ये मनवंतर अवतार ये जो मनु का समय चल रहा है इसमें वामन देव मनवंतर अवतार हैं और मनवंतर अवतार पूरे मनवंतर तक प्रायः रहते हैं अर्थात वामन देव अभी भी हैं स्वर्ग में अदिति के पुत्र के रूप में इंद्र से सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसका वर्णन बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी ने किया है। तो वामन देव इस समय के अवतार हैं और इस समय जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। तो ये सब जब वर्णन हम लोग सुनते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि ये देवता ये पद हैं जो बदलते रहते हैं भगवान पद नहीं है। देवता हर समय बदल जाते हैं एक मनु के समय तक एक इंद्र रहते हैं फिर दूसरे मनवंतर में दूसरे इंद्र आते हैं सप्तऋषि बदल जाते हैं भगवान के अवतार अलग अलग आते हैं। तो इंद्र जिनका नाम है पुरंदर इस समय जो इंद्र हैं फिर आगे का वर्णन किया गया कि आठवें जो मनु होंगे उनका नाम होगा सावर्णी और उस मनवंतर में उस मनु के समय सावर्णी मनु जो आठवें मनवंतर में आएंगे बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो ये वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आठवें मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे क्योंकि भगवान ने जब उनसे आकर तीन पग भूमि मांगी दान में मांगी उन्होंने सब कुछ दान दे दिया फिर भी भगवान ने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर कृपा करने के लिए अब वो आठवें मनवंतर में उनको इंद्र बनाएंगे। तो ऐसा वर्णन आठवें मनवंतर का हुआ। तो सातवें में वैवस्वत श्राद्ध देव मनु हैं और उसके बाद पुरंदर इंद्र हैं और भगवान के वामन अवतार हुए, आठवें मनु में सावर्णी मनु होंगे क्योंकि अभी हुए नहीं है इसीलिए होंगे आगे, और बलि महाराज इंद्र होंगे, और उस समय उनका जो अवतार होगा वो सार्वभौम कहलाएगा, भगवान का अवतार सार्वभौम होंगे और वो बलि महाराज को इंद्र बनाएंगे। ज्यादातर जब मनवंतर अवतार आते हैं तो वो इंद्र बनाते हैं, और कभी कभी वामन देव जैसे इंद्र की रक्षा करते हैं। तो सार्वभौम अवतार होंगे। नवे जो मनु हैं उनका नाम है दक्ष सावर्णी। तो दक्ष सावर्णी के समय इंद्र जो बनेंगे उनका नाम होगा अद्भुत, और जो भगवान के अवतार आएंगे वो होंगे ऋषभदेव। तो वो भगवान के अवतार होंगे, ये नौवे मनवंतर में होगा। दसवें मनवंतर में जो सावर्ण जो मनु बनेंगे उनका नाम है ब्रह्म सावर्णी, और इनके समय में जो इंद्र बनेंगे उनका नाम होगा शंभु, और जो भगवान के अवतार आएंगे वो होंगे विश्वक्सेन। ग्यारहवें मनु होंगे धर्म सावर्णी, जिनमें वैद्रथ नाम का जीव इंद्र के पद को स्वीकार करेगा, और धर्म सेतु नाम के भगवान के अवतार होंगे। बारहवें रुद्र सावर्णी हैं, जिनके समय में रिधात्मा नाम का व्यक्ति इंद्र के पद को लेगा और स्वधाम भगवान के अवतार होंगे। फिर अंतिम दो मनु हैं देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। तेरहवें मनु देव सावर्णी होंगे, जिनमें दिवसपति नाम का व्यक्ति इंद्र बनेंगे और भगवान के अवतार होंगे, जिन्हें यज्ञेश्वर कहा जाएगा। और अंतिम जो मनु इस कल्प के होंगे ब्रह्मा जी के एक दिन के, तो वो इंद्र सावर्णी होंगे, और शुचि नाम के व्यक्ति को इंद्र बनाया जाएगा, और भगवान के जो अवतार होंगे उनका नाम होगा बृहद भानु। तो ऐसे ये 14 मनुओं का वर्णन 13वें अध्याय में किया गया। तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि शास्त्र न केवल पूर्व काल की बात कहते हैं, वर्तमान की कहते हैं, परंतु भविष्य के भी कितने आगे लाखों करोड़ों साल के आगे का वर्णन कर दिया है कौन कब बनेगा। जैसे एक मनु का समय ये करीब 71 चतुर्युग का होता है, एक चतुर्युग 43,20,000 साल होते हैं। तो एक ही मनु के समय में कितने सारे करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं, और यहाँ पर आगे आने वाले 8 मनु और जो भी आएंगे उन सब का वर्णन कर दिया गया है, 7 मनु का। तो शास्त्र ये इतने प्रामाणिक हैं। तो ऐसे जब 13वें अध्याय में वर्णन किया गया, तो 14वें अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ये जो मनु हैं ये इनको चुनता कौन है और इनको शक्ति कौन प्रदान करता है, इनको सेवा में कौन लगाता है। तो फिर 14वें अध्याय में, बहुत छोटा अध्याय है लेकिन उसमें प्रमुखता सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्या कार्य होते हैं मनु के, कौन इन्हें चुनता है, कौन इन्हें सेवा में लगाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान स्वयं चुनते हैं, और जैसे हर मनु में मनवंतर अवतार होते हैं तो वही लोग उस समय के जो मनु हैं उनको चुनते हैं और वही सेवा में लगाते हैं। और फिर ऋषि मुनियों का वर्णन किया गया, जैसे श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सप्त ऋषि क्या करते हैं। तो ऋषियों का कार्य होता है कि जब धर्म के सिद्धांत नाश हो जाते हैं उनको पुनः स्थापित करना। तो हर चतुर्युग के अंत में प्रायः धर्म के सिद्धांत लुप्त हो जाते हैं। जैसे इस कलयुग का भी अंत का वर्णन है कि कोई भक्ति भक्त बहुत कम रहेंगे, धर्म का पूरा नाश हो चुका होगा, अधर्मी लोग होंगे। तो फिर उस समय ऋषि मुनि जो 7 सप्त ऋषि होते हैं इनका कार्य होता है कि ये धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करते हैं, और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हर चतुर्युग के अंत में ये कार्य ऋषि मुनि करते हैं। तो ऐसे 14वें अध्याय में वर्णन किया गया ब्रह्मा जी के कल्प का, कि एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिवस। वैसे जब हम लोग ये शब्द सुनते हैं कल्प, साधारणतः तीन कल्पों का वर्णन होता है, महाकल्प, विकल्प और कल्प। लेकिन ये सृष्टि से संबंधित है। जब ये भगवान रचना करते हैं भौतिक जगत की, तो जो सबसे पहली रचना महाविष्णु के स्तर पर होती है उसको महाकल्प कहा जाता है। और फिर विकल्प, विकल्प मतलब ब्रह्मा जी इत्यादि की रचना, ब्रह्मा जी की रचना की जाती है, वो विकल्प कहलाता है। और फिर ब्रह्मा जी जिसकी रचना करते हैं वो कल्प कहलाता है। तो महाकल्प, विकल्प और कल्प। वैसे क्योंकि ब्रह्मा जी रचना करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी के एक दिन को भी कल्प कहा जाता है। वैसे 30 कल्प होते हैं ब्रह्मा जी के एक महीने में, और ब्रह्मा जी ऐसे 12 महीनों का एक साल और ऐसे 100 साल तक जीवित रहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का जीवन है। तो ऐसे कल्प का वर्णन भी किया गया 14वें अध्याय में। अब 15वें अध्याय में, ये दो अध्याय हो गया, 15वें अध्याय के प्रारंभ में बहुत सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि सब कुछ तो भगवान का है, फिर उन्होंने भिक्षा क्यों मांगी, 3 पग भूमि क्यों मांगी बलि महाराज से। और दूसरा प्रश्न वो करते हैं कि हालांकि बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, फिर भी भगवान ने उन्हें बंदी क्यों बनाया। तो ये दो आपने विरोधाभास बातें कही, भगवान ने भिक्षा मांगी और बलि महाराज को बंदी बनाया। तो ये कैसे हुआ, ये इसका क्या राज है, रहस्य क्या है, उसको मुझे समझाइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में बलि महाराज की कथा को या वामन देव के अवतरण की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि युद्ध के बाद बलि महाराज तो मर चुके थे, मृत्यु हो गई थी, वज्र लगा था इंद्र का, शुक्राचार्य जी ने उन्हें पुनः जीवित किया। क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उन्हें पुनः जीवित किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण किया, गुरु स्वीकार किया उन्हें, और उनके आदेशानुसार फिर वो कार्य करने लगे। तो उस समय जो ब्राह्मण थे भृगु मुनि के वंशज, उन्होंने बलि महाराज के ऊपर अपनी बड़ी कृपा की, उनसे कई यज्ञ करवाए, उनको कई शक्तियां प्रदान की। और फिर एक यज्ञ हुआ, विश्वजीत यज्ञ बलि महाराज ने किया। इस विश्वजीत यज्ञ में बलि महाराज के लिए एक बहुत सुंदर रथ प्रकट हुआ यज्ञ से। उसमें रथ था, घोड़े थे, अस्त्र शस्त्र थे, ये दिव्य रथ प्रकट हुआ। और बलि महाराज ने इसको स्वीकार किया, और बलि महाराज इस रथ पर चढ़कर अब स्वर्ग पर आक्रमण करने चले। तो दिव्य रथ था और ब्राह्मणों की शक्ति प्राप्त थी। तो उस समय जब वो स्वर्ग पहुंचे, तो वहां स्वर्ग का वर्णन किया गया है कुछ श्लोकों में कि स्वर्ग कैसा है। तो बहुत सुंदर वर्णन है, ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो स्वर्ग के प्रति आकर्षण हो जाएगा और फिर हम लोग भगवान के धाम जाना छोड़कर स्वर्ग में जाने की कामना कर बैठेंगे, और गलती से भगवान ने पूरा कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जान लीजिए, जब हम लोग जप करते हैं भगवान के नाम का, और उस समय अगर ऐसी कोई भी इच्छा हमारे मन में आती है, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो उसको पूरा कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो जप है ये शुद्ध नाम नहीं है। जिनका जप शुद्ध है उनके हृदय में भौतिक इच्छा भी आ जाए गलती से, तो भी भगवान उसको पूरा नहीं करते हैं, उसको आध्यात्मिक बना देते हैं। लेकिन हमारा जप अपराध युक्त जप है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपराध युक्त जप करता है, नाम अपराध लेते हुए, तो उस व्यक्ति के जप से उसे भौतिक लाभ मिलता है। क्योंकि नाम है, लाभ तो देगा ही, अग्नि है वो तो जलाएगी ही, अब हमारे ऊपर है कि हम अग्नि से अपना हाथ जलाते हैं, अग्नि से भोजन पकाते हैं या अग्नि में यज्ञ करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसी तरह प्रभुपाद समझाते हैं कि या तो हम नाम युक्त अपराध द्वारा अपराध युक्त नाम लेते हैं तो भौतिक लाभ मिलेगा, अपराध मुक्त नाम लेते हैं तो मुक्ति मिलेगी, शुद्ध नाम लेते हैं तो प्रेम मिलेगा। जैसे अग्नि हाथ जला सकते हैं, कुछ हम लोग पका सकते हैं या फिर यज्ञ कर सकते हैं, तो ऐसे ही इसीलिए हमें बड़ा सावधान होना चाहिए कि भगवान का नाम लेते समय इन इच्छाओं को नहीं लाएं, क्योंकि जैसी इच्छा आएगी नाम पूरा कर देंगे और फिर तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान के नाम को लेते हुए हृदय में कोई भौतिक इच्छाओं को नहीं रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान के नाम लेते हुए भक्ति करते हुए इन इच्छाओं से परे रहे, ऐसी कोई इच्छा हृदय में नहीं लाएं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए या अन्य चीजें प्राप्त हो जाए। तो स्वर्ग की कामना भी गलती से मत कर लीजिएगा जब करते हुए कि एक दिन थोड़ा स्वर्ग में भी घूम कर आऊं, सुना है अच्छे गार्डन बने हुए हैं, वहां से डिजाइन लेकर आऊंगा, यहाँ पे गार्डन बनाऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ जैसा भी टूटा फूटा गार्डन बना दीजिए ठीक है, लेकिन स्वर्ग से डिजाइन लाने मत जाइएगा। भगवान भी गए थे तो उन्हें युद्ध करना पड़ा था वहां पर। तो इसीलिए ऐसी भौतिक इच्छाओं से हमें परे रहना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं ज्यादातर जब जब होता है तो हृदय में भौतिक इच्छाएं ही आती हैं कि ये प्राप्त हो जाए, वो मिल जाए, या कोई सोचता है मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं और उसे लगता है ये तो आध्यात्मिक इच्छा है, ये भी भौतिक इच्छा है। अगर हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़े प्रचारक बन जाएं, क्यों? क्योंकि हम अपने अहंकार के लिए सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं। तो बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे तो गुणगान किसका होगा? आपका। इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं जहां भी रहूं भगवान का गुणगान करता रहूं, बस। तो ऐसे अब बलि महाराज स्वर्ग पहुंचे, तो स्वर्ग का वर्णन क्योंकि अध्याय में किया इसलिए संक्षेप में कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर उद्यान है वहां, नंदन कानन वन, और फिर वर्णन किया गया कि कैसे वहां पर सुंदर स्त्रियां हैं जो सुरक्षित रहकर वहां पर उन उद्यानों में घूमती हैं। फिर वहां के नगर का वर्णन किया गया कि बहुत व्यवस्था से वो बना हुआ है, विश्वकर्मा ने इसकी रचना की है। तो वहाँ की सड़कें, वहाँ के महल, वहाँ के लोग, सबका वर्णन किया गया। और उसमें अंत में लिखा है, उस वर्णन के अंत में, कि इस स्वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में द्वेष हो, धोखा देने की भावना हो, छल कपट हो, पाप की कामना हो, ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी स्वर्ग में, क्योंकि वहां रहने वालों के हृदय में ऐसी भावनाएं नहीं। तो सोचिए इस पृथ्वी से श्रेष्ठ स्वर्ग क्यों माना गया है? कभी कभी प्रश्न आता है कि अगर स्वर्ग बहुत ऐसे भोग का स्थान है तो उसको पृथ्वी से श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि ये सारी चीजें वहां नहीं है, लोभ मद मात्सर्य इत्यादि वहां पर नहीं, ऐसे लोगों को वहां प्रवेश नहीं। तो ऐसे स्वर्ग का वर्णन हुआ, और अब बलि महाराज ने चारों तरफ से स्वर्ग को घेर लिया। वैसे बहुत कठिन है प्रवेश करना, लेकिन अब शक्ति बहुत बड़ी हुई थी और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया जो शुक्राचार्य जी ने उन्हें दिया था, जिसको सुनकर सारे देवता घबरा गए। इंद्रादि देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये हमारा जो पहले का शत्रु, पुराना शत्रु फिर से वापस आ गया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इसकी शक्ति तो अपार है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने मुख से सारे ब्रह्मांड को खा जाएगा, अपनी आंखों से सारी दिशाओं को जला देगा। तो आप कृपया बताइए ये क्या हुआ है, अचानक इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? तो उस समय बृहस्पति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बृहस्पति ने कहा कि इनको इस समय आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त है, भृगु मुनि के वंशजों ने, ब्राह्मणों ने, इनके गुरु ने इनको शक्ति दी है, अर्थात वे बता रहे थे कि साधारण अवस्था में बलि महाराज को कोई शक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने गुरु की सेवा की है, गुरु की कृपा से इन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई है और इस समय भगवान के अलावा कोई इन्हें परास्त नहीं कर सकता। स्वयं बृहस्पति कह रहे हैं भगवान के अलावा कोई इन्हें परास्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं, वे कहते हैं कि आध्यात्मिक बल या आध्यात्मिक प्रगति अपने बल से नहीं होती, गुरु की कृपा से होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, भक्ति में आगे बढ़ने का ये सूत्र है कि भक्ति की प्रगति, भक्ति में आध्यात्मिक बल हमें अपने बल से नहीं गुरु की कृपा से मिलता है। प्रभुपाद इसको लिखते हैं, जैसे बलि महाराज को वैसे तो ये बल नहीं मिलना था, लेकिन उन्होंने गुरु की सेवा की और गुरु की कृपा से उन्हें ये बल मिला। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, गुरु प्रसाद बलवान न तस्मात बलवत्तरम तथापि श्रवणादिश्च कर्तव्य मोक्ष सिद्धये। श्रुतियों में से एक मंत्र है ये कि गुरु प्रसाद बलवान, गुरु के जो प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। न तस्माद बलवत्तरम, बलवत्तरम यानी उससे ज्यादा, जैसे बेहतर तो तरम, तो उससे बलवान कुछ नहीं है। न बलवान न तस्माद बलवत्तरम, तो गुरु की जो कृपा है, गुरु प्रसाद बलवान, न तस्माद बलवत्तरम, उससे बलवान कोई चीज नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या हमें फिर भगवान की कथा वथा सुननी चाहिए या नहीं, गुरु की कृपा मिल जाएगी रहेंगे। तो कहते तथापि श्रवणादिश्च कर्तव्य मोक्ष सिद्धये, जो लोग अपने जीवन में मुक्ति या सिद्धि प्राप्त करना चाहते, मोक्ष सिद्धये, तो उन्हें तथापि फिर भी श्रवणादिश्च श्रवण करना चाहिए। श्रवणादिश्च मतलब सारी जो क्रियाएं हैं भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद श्रवणादिश्च, वो क्रियाएं उनको करनी चाहिए, कर्तव्य। लेकिन महत्व है गुरु की कृपा का। तो प्रश्न आता है कि हमें गुरु क्यों चाहिए, क्या हम शास्त्र पढ़कर, अब इतने सारे शास्त्र हैं हमारे पास, भक्ति की क्रिया है, अगर हम शास्त्र पढ़कर भक्ति नहीं कर सकते क्या? तो इसका उत्तर है कि गुरु की कृपा के बिना हमें शास्त्र समझ नहीं आते। इसको जानना चाहिए कि जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर आती है, तब हम उन्हीं शास्त्रों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्मा, उनके जो हृदय में तस्यैव कथितम यर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरु की सेवा करते हैं उनको शास्त्र समझ में आते हैं। जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, वो चाहे कितना ही शास्त्र पढ़ लें, उनको समझ में आने वाला नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या होगा, हम बहुत शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों के श्लोकों को बड़ी अच्छी तरह से गुणगान करेंगे, समझा सकेंगे, लेकिन केवल हमारा अहंकार बढ़ेगा। तो भक्ति करते हुए हमारा अहंकार क्यों बढ़ता है, ये प्रश्न आता है। क्योंकि भक्ति तो हमें नम्र बनानी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको नम्र बनना चाहिए, भक्ति में प्रगति का लक्षण है नम्रता। लेकिन अगर किसी का अहंकार बढ़ रहा है तो उसका क्या अर्थ है, उसको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है, वो भक्ति के मार्ग का साधन ठीक से नहीं कर रहा, या फिर वो भक्ति केवल अहंकार बढ़ाने के लिए कर रहा है। जैसे हमने अभी कहा कि जब हम जप करते हैं, जप करते समय कोई भावनाएं लाते हैं तो पूरी हो जाती है, तो अगर जप करते समय हमारी इच्छा है कि मेरा अहंकार बढ़े तो फिर वो अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब करते समय हमारी इच्छा है कि मैं बहुत नम्र रहूं, तब फिर हम नम्र रहते हैं। तो इसीलिए बहुत नम्रता से, दीन भाव से, एक भिक्षुक के भाव में हमें जप करना चाहिए। जप क्या है, जब ये भगवान से एक याचना है, और जब कोई याचना करते हैं तो अहंकार से नहीं की जाती, याचना दीन भाव में की जाती, भिक्षुक के भाव में की जाती, कुछ प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो इसलिए ऐसे भाव में हमें रहना चाहिए। तो इंद्र आदि देवों को बृहस्पति समझाते हैं कि इस समय बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त है, इसलिए केवल भगवान उन्हें परास्त कर सकते हैं और कोई नहीं। तो फिर देवताओं ने मानो पूछा हो कि फिर हम लोग क्या करें, तो उन्होंने कहा इस समय आपके लिए यही अच्छा है कि आप स्वर्ग छोड़कर चले जाओ, छुप जाओ कहीं जाकर, क्योंकि युद्ध करोगे तो बुरी तरह परास्त हो गए, कोई लाभ नहीं। तो आप सब जगह छुप जाओ, सब लोग अपने अपनी जगह जाकर कहीं पे छुप जाओ। तो देवताओं ने मानो पूछा कब तक छुपे रहेंगे, ये बलि तो ये तो राज्य करता रहेगा, हम लोग क्या छुपे रहेंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, आगे चल के बलि महाराज अपने गुरु का अपमान करेंगे, और जब वो अपने गुरु का अपमान करेंगे तो उनकी सारी संपत्ति शक्ति चली जाएगी। हाँ, भगवान उन पर फिर भी कृपा करेंगे, ये उन्होंने कहा, लेकिन क्योंकि गुरु का अपमान करेंगे इसलिए उनकी सारा ऐश्वर्य शक्ति चली जाएगी, तब आप फिर से वापस आ सकोगे, तब तक आप छुपे रहो। मतलब आश्वासन दिया, कहीं तो देवताओं को लगे आप कह रहे छुपे रहो, पता चले जीवन हमारा उसी में निकल गया छुपे छुपे, हाँ पता चला मर गए छुप छुप के, क्या होगा। बोले नहीं, बहुत जल्दी होगा ये। तो ये दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात शुक्राचार्य बृहस्पति बताते, पहली उन्होंने बताई कि गुरु की कृपा हमारे बल से ज्यादा शक्तिशाली है, और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि अगर हम ब्राह्मणों का भक्तों का अपमान करते हैं तो जो हमारे अंदर आध्यात्मिक बल शक्ति, हमारा ऐश्वर्य, हमारा धन, हमारी संपत्ति, ये सब चला जाए, फिर वो नहीं रहेगा। जैसे बलि महाराज, तीनों लोकों को जीत लिया और स्वर्ग को जीत लिया जिन्होंने, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करेंगे, आगे ये कथा आएगी कि कैसे वो शुक्राचार्य जी की बात को नहीं मानेंगे तो अपने गुरु के प्रति अपराध कर देंगे, तो फिर उनकी सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य चला जाएगा। लेकिन फिर भी क्यों करेंगे वो गुरु का अपमान, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसीलिए उनका सारा ऐश्वर्य फिर से भगवान स्थापित करेंगे। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण कारण बलि महाराज से सब कुछ लेने का भगवान का ये था कि वो बताना चाहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति गुरु के प्रति अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा, क्योंकि अपराध किया था उन्होंने, बात नहीं मानी। लेकिन दूसरी ओर ये अपराध अगर भगवान के लिए किया जाता है तो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, भगवान उस पाप से मुक्त करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर वो बलि महाराज का सब कुछ नहीं लेते तो आगे प्रथा हो जाती कि हम भी गुरु का अपमान कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने दिखलाया कि गुरु का अपमान करने से सारा ऐश्वर्य गया, बंदी बन गए। लेकिन दूसरी ओर गुरु का अपमान किया भगवान के लिए, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु को कभी त्यागना नहीं चाहिए, गुरु को केवल एक, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको केवल एक स्थिति में त्यागा जा सकता है, जब वो हमें भगवान की भक्ति के विरुद्ध ले जाएं, जब वो हमें ये बताएं कि कृष्ण भगवान नहीं है, और जब वो हमें ये बताएं कि भगवान की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस स्थिति में गुरु को त्याग देना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने यही किया, उन्होंने कहा भगवान ये भगवान है लेकिन इनकी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, मत दो इनको सब कुछ। तो फिर उसी समय बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। तो ऐसा वर्णन कहा गया कि ऐसे है। तो उस समय फिर सारे देवताओं ने स्वर्ग को त्याग दिया, सब देवता इधर उधर जाकर कहीं छुप गए, यहां पर भी जिनको अवसर मिला, जहां स्थान मिला। और फिर बलि महाराज ने प्रवेश किया स्वर्ग में, तो स्वर्ग में कोई था ही नहीं युद्ध करने के लिए, तो बलि महाराज का फिर राज्य हो गया। तो बलि महाराज राज्य करने लगे, और उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि अब आपको अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए, 100 अश्वमेध यज्ञ, जिससे आप, हालांकि इंद्र तो बन गए हैं, अभी राजा बन गए हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर से इंद्र आकर आपको हटा दे, तो इसीलिए आप यज्ञ कर लीजिए ताकि आप कभी भी हट नहीं सकें, इसी पर बने। तो उस समय बलि महाराज ने इन यज्ञों को किया और उसके कारण उनका बल बहुत बढ़ गया और अब उनको परास्त करना असंभव था। तो ऐसे समय में बलि महाराज अब स्वर्ग में रहकर भोग करने लगे, आनंद लेने लगे, राज्य करने लगे। तो ऐसे समय में अब बलि महाराज का जब राज्य हो गया, सारे जो देवता थे चले गए, तो अदिति बड़ी दुखी हो गए और अदिति ने अपने पति से फिर कुछ कहा कि इसका क्या उपाय है, और फिर अगले अध्याय में उस उपाय को बताएंगे। 12 दिनों में केवल 12 दिन का व्रत ये अदिति ने किया था, इसको पयो व्रत कहते हैं। तो आगे अध्याय में वर्णन होगा कि क्या है ये व्रत, कैसे करना चाहिए, और केवल 12 दिनों में ये व्रत करने से भगवान ने उनके पुत्र बनना स्वीकार किया। तो ये अगले अध्याय में वर्णन होगा कि इस पयो व्रत का। तो ऐसे यहाँ पर बलि महाराज ने इस स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया अपने गुरु और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके। तो इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपी, जिनकी कृपा से, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा मिलती है, यस्य अप्रसादात उनकी कृपा ना हो, न गति कुतोपी, देवताओं को भी भागना पड़ता है। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भक्ति मार्ग में एक सिद्धांत को कभी नहीं छोड़े, गुरु की सेवा और गुरु के आदेशों का पालन। अगर ये चीज हम करते रहेंगे, जैसे प्रभुपाद ने हमें आदेश दिए 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, हम लोग वो करते रहेंगे। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर आप प्रामाणिकता से 16 माला जप कर रहे हैं, तो अगर भक्ति में कभी आपका पतन भी होता है तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। क्यों रक्षा करेंगे? क्योंकि आप गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग यही है कि हम गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, भक्तों की सेवा करें और इसी के द्वारा आध्यात्मिक बल को प्राप्त करके फिर हम हर ऐसी वस्तु जो भक्ति में बाधा है उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।